नमस्ते। संसार को हम लोग बाहर से समझते हैं और बाहर से देख करके जो हमारी इंद्रियां दिखाती हैं उसके अनुसार से चीजों को देखने का समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन इंद्रियां और मन ये मिलकर हमें सत्य नहीं दिखाते, हमारी सीमाएं निर्धारित करते हैं और इसको हम बहुत तरह से समझ सकते हैं। इंद्रियों का खेल तो हम जानते ही हैं कि सब कुछ एक्सटेंड करता है सब चीज़ में, लेकिन इंद्रियां ये नहीं दिखाती हैं। इंद्रियां आपको एक सॉलिड फॉर्म, सेपरेट फॉर्म, फिगर दिखा रही हैं और इसका अपना एक रीज़न है। इंद्रियां तो ये दिखाती है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य ये भी नहीं है कि पृथ्वी केवल सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है चारों तरफ नहीं, गोलाकार। सत्य ये है कि दोनों ही आकाश गंगा में चक्कर लगा रहे हैं, और इसके भी आगे बहुत बड़ा सत्य है कि सब कुछ संसार में वो चक्कर लगा रहा है, गतिशील है, लेकिन वो किसको केंद्र में रख के गतिशील है। अब देखिए, योग की दृष्टि आपको कैसे बताएगी, यत किंच जगत्याम जगत ईशावास्यम इदम सर्वम। तो ये अंतर होता है कि जब हम इंद्रियों से देखते हैं जगत को तो सीमित ढंग से हम उसको अनुभव करते हैं। मन कैसे सीमित करता है, मन की ये टेंडेंसी होती है कि जो चीज उसके इमीडिएट परिवेश में है, वातावरण में है, उनके साथ वो हमें आइडेंटिफाई करवा देता है। सरफेस माइंड की ये गति है, और उसकी वो कहानी है ना, वो बच्चा जो जंगल में पैदा हुआ, मोगली की कहानी, ये एक्चुअल रियल स्टोरी पर बेस्ड है बाय द वे। जंगल में बड़ा हुआ और वो भेड़िए के साथ रहने लगा और उसको भेड़िए ने बड़ा किया, और धीरे धीरे वो इतना अभ्यस्त हो गया उसका कि वो बस सोचने लगा कि मैं भी एक भेड़िया हूँ। तो मानवोचित कोई भी चीज़ उसके अंदर नहीं। तो इस प्रकार से हमारा मन क्या करता है, हमें एक सीमित दायरे में बांध कर, और फिर उसके साथ सारे मनों में जगत की कंडीशनिंग होती है। आप बच्चा जब घर में आता है तो थोड़ी कोई माँ बाप बोलते भगवान आए हैं हम कहते हैं आ गया हमारा लल्ला, और उसके साथ में कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। हमारा लल्ला क्या करेगा, हम जब बड़ा होगा तो हमारी अपूर्ण इच्छाओं को, हमारे अहंकार को पोषित करेगा। स्कूल में भी ये रीइन्फोर्स किया जाता है, स्कूल में तो और जबरदस्त होता है कि आपकी पहचान केवल आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं, यू आर ए नंबर। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे हमारा मन इतना कंडीशन्ड हो जाता है कि वो प्रिजन को ही घर समझने लगता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी सी जैन कहानी है कि एक जू में कोई गया तो देखा कि सारे जानवर अपना अपना काम कर रहे हैं, तोता साइकिल चला रहा है, देखा है ना जू में करते हैं, और गधा नाच रहा है म्यूजिक सुन करके, और कुत्ता मैथमेटिक्स कर रहा है, टू तो टू ले गया, प्लस तो प्लस ले गया, फोर। तो सबसे पूछते हैं उसको जानवरों की भाषा आती कि क्या कर रहे हो तुम लोग, अरे हमें क्या, हमें खाना पीना मिलता है, मालिक अच्छे से रखता है, बस यही हमें चाहिए। तो कहता है यही हमें चाहिए, देखता है एक सिंह बैठा है कोने में, वो जू की तरफ नहीं देख रहा है, उस तरफ देख रहा है, माने जो सर्कस का जो बाड़ा है उसकी उस तरफ देख रहा है। तो सिंह से भी वो बात करता है कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ये सब लोग तो इतने व्यस्त हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो वो कहता है मैं वही काम कर रहा हूँ जो एकमात्र कहना देख करना चाहिए। तो क्या कर रहे हो तुम, मैं तो देख रहा हूँ कि इस बाड़े को मैं क्रॉस कैसे करूँ, क्योंकि मेरा जीवन तो वहाँ है। तो उसी प्रकार से मनुष्य, ये जो अज्ञान, जिसको आप अक्सर हम अज्ञान से हम समझते हैं कि इंटेलेक्चुअल नॉलेज का भाव, लेकिन अज्ञान स्पिरिचुअल टर्म्स में एक फॉल्स आइडेंटिफिकेशन को कहा जाता है। रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, जब हम समझते हैं ये मैं हूँ, क्या मैं हूँ, मैं शरीर, तो ये अज्ञान है। आप शरीर के बारे में सब कुछ जानते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पर वो अज्ञान है। जब आप अपने प्राण के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, और वो कहते हैं ना कई लोग, मैं बहुत कर्मठ हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो ये अज्ञान है। जब आप अपनी भावनाओं के साथ आइडेंटिफाई करते हैं और कहते हैं मैं बहुत इमोशनली वीक हूँ, या मैं बहुत इमोशनली स्ट्रांग हूँ, मैं सेंटिमेंटल हूँ, इत्यादि इत्यादि, ये अज्ञान है। जब आप अपने मन के साथ आइडेंटिफाई करते हैं मैं बहुत विचारवान हूँ, इंटेलिजेंट हूँ इत्यादि, ये सब अज्ञान है। आपने कितनी भी किताबें लिखी हों, लेकिन ये सब अज्ञान है। तो ज्ञान क्या है, जिस दिन आप आइडेंटिफिकेशन के द्वारा, मेंटली नहीं, माइंड से आप शुरू कर सकते हो ये प्रोसेस, ये जान जाते हैं कि मैं आत्म तत्व हूं, अविनाशी हूं, अचिंत्य हूं, मैं वास्तव में अनेकों अनेकों शरीरों में आता हूं लेकिन मेरी मृत्यु नहीं होती, यू बिकम कॉन्शियस ऑफ योर इमोर्टैलिटी. जिस दिन आप इस मूल तत्व को जान जाते हो, वहां से अज्ञान का बादल हटना शुरू हो जाता है. तो फिर उसका क्या होता है, माइंड लाइफ बॉडी का आप डिस्कार्ड कर देते हो? नहीं, वो आपके यंत्र बन जाते हैं. एक इंटेलेक्चुअल माइंड आपको दिया गया है, प्रकृति ने बनाया. आप ये नहीं कहते हो आई एम इंटेलिजेंट, यू नो, प्रकृति ने अपने संयोजन से एक विशेष प्रयोजन से आपको दिया है. और चूंकि आपने चैत्य सत्ता को पहचान लिया है, तो आप उसको देवोचित गुण के अनुसार आप उसको भगवत सेवा में लगाते हो. आप भावनात्मक मन आपका है, तो आप ये नहीं कहते आई एम वेरी इमोशनल. आप देखते हो कि मेरे अंदर भावनाओं का प्रबल आवेग है, लेकिन आप अब उसको भी यंत्र बनाते हो. कैसे? ये भावनाएं ट्रेमेंडस पावर हैं. माँ बताती हैं कि कई लोग इससे डरते हैं, बिकॉज उसमें बह जाने से इंसान धाराशाही, इट्स ट्रेमेंडस पावर. लेकिन यही भावनाएं जो आपको धाराशाही कर सकती हैं, वो एक क्षण में उठा के आपको आकाश में ले जाती हैं. इसीलिए माँ कहती हैं इट इज द हार्ट दैट हैज विंग्स. तो इस प्रकार से आप शरीर को, मन को, प्राण को एक यंत्र के रूप में इस्तेमाल करते हो. लेकिन यंत्र के रूप में इस्तेमाल करने से भी आपका कंप्लीट ईगो सेल्फ नहीं जाता है, वो एक चिपका रहता है कहीं ना कहीं, बहुत पतला हो जाता है. टाइम टू टाइम यू मे एंटर इनटू इट, बट नेक्स्ट मोमेंट यू विल रियलाइज. और इसका एक टिपिकल उदाहरण है जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने वो कहानी सुनाई कि एक साधु ने एक सर्प को कहा कि तुमसे सब डरते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है, तुम डराना बंद करो. तो कहता है ठीक है, तुम काट लेते हो, ये करते हो, तो बंद कर देता है. लेकिन अब लोग उसको मारने लगते हैं. तो एक दिन ये होता है कि वो सांप लाहू लुहान पड़ा है, साधु फिर जा रहा है. साधु कहते हैं तुम्हें क्या हुआ? कहते हैं आपकी बात मानने का परिणाम है. मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने, आपने कहा था ना काटो मत, तो देखिए नतीजा. तो कहते हैं मैंने काटने को मना किया था, फुफकारने को थोड़ी कहा था. तो अहंकार का एक छोटा सा भाग रहता है विच यू कैन यूज फॉर अ सर्टेन पर्पस इन वर्क. तो ये पहला हम पांच कैंटों में देखते हैं. सावित्री इज रियलाइज्ड साइकिक बीइंग, शी नोज हु शी इज, पर ईगो इज नॉट डेड, नॉट गॉन. नेक्स्ट स्टेप पर अब हम चाहें तो उस स्टेट में रह सकते हैं. ये भी एक सुंदर स्टेट है, दिखाते ना सावित्री उस स्टेट में, ब्यूटिफिक स्टेट है. वाई शुड वन बॉदर आफ्टर दैट? आपके लिए जीवन इतना सुंदर हो जाता है. एक ईगो की एक हल्की सी पर्सनैलिटी है इंस्ट्रूमेंटल, जो जरूरी है आप जगत में संबंध रखने के लिए जरूरी है. मैं भी कह देता हूँ मुझसे कोई पूछने से कि आप मास्क क्यों नहीं लगाए, तो मैं कह देता हूँ मैं डॉक्टर हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पहचान डॉक्टर की है, मैं डॉक्टर हूँ तो आप ठीक है निकल जाइए. सॉरी डॉक्टर है कोई एक ने बोल दिया था कि आप डॉक्टर हैं, आपको और सचेत होना चाहिए. मैंने कहा मैं ज़्यादा सचेत हूँ इसलिए मास्क नहीं पहन रहा हूँ. तो वो एक दूसरी कहानी है. पर ये एक यू विल स्टिल यूज़ द वर्ड आई, क्योंकि आप कौन से शब्द यूज़ करोगे, पर उस आई का अर्थ आपके लिए बदल गया है. ये पहले पांच कैंटों में बुक सेवन के हम देखते हैं. छठे कैंटों में अब लेकिन सावित्री केवल इसलिए नहीं आई है कि वो चैत्य सत्ता में रह के फ्री हो गई, शी इज ए फ्री बीइंग नाउ. वो चाहे तो आए चाहे तो नहीं आए, शी कैन डिसाइड, शी इज फ्री, शी कैन इनकारनेट ए हायर बीइंग, सब कुछ वो कर सकती हैं उस तरह से. उनकी जो स्कूलिंग है नेचर में, एक हम ऑर्डिनरी व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो पूरी हो चुकी है. तो देर इज नो नीड फॉर हर टू कंटिन्यू. इफ शी वांट शी कैन लीव द अर्थ. और उस सुंदर अवस्था में शी हियर्स ए वॉइस कि तुम केवल अपने लिए नहीं आई हो, तुम्हें एक भगवान का काम करना है. तो जैसे हम लोग लॉ ऑफ सफरिंग में बात कर रहे थे, ये पहला जब आप चैत्य सत्ता को पा लेते हैं तो आपकी व्यक्तिगत सफरिंग समाप्त हो जाती है. क्योंकि आप जानते हो कि बॉडी सफर्स, माइंड सफर्स, हार्ट सफर्स, आप सेपरेट कर सकते हो अपने आप को जब चाहो, वो द्वार खुला हुआ है. इनफैक्ट आप उसमें रहोगे, देखोगे भी, आप एकदम विटनेस कर सकते हो इवन फिजिकल सफरिंग को कि अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ऐसे होता है, हाथ में दर्द होता है, अच्छा यहाँ पर ऐसे हो रहा है, मुझे मेरा बुखार चढ़ रहा है. आप एकदम सेपरेट करके देख सकते हो, उससे अप्रभावित होगे. इवन आपके बाहर के शरीर में, शरीर सबसे अधिक होता है ना फिजिकली को, उसमें रोग हो रहा है, पर आप अंदर में फ्री हो तो आप फिर भी बॉडी को यूज कर सकते हो एज एन इंस्ट्रूमेंट. और उस समय के लिए शरीर एकदम रोग मुक्त अवस्था में प्रवेश कर जाएगा, आप उससे बंधे नहीं हो, आप उसको फिर भी यूज कर सकते हो. जब बंधे होते हो, ओ माय गॉड मेरा तो क्या हाल है, मैं तो बस, मुझे क्यों हो गया ऐसे, इस तरह के विचार आपके अंदर आएंगे. बट यू आर फ्रीड फ्रॉम द बॉडी, यू आर फ्रीड ऑल्सो फ्रॉम द माइंड. आपके शरीर की अवस्था पे आपके मन की अवस्था निर्भर नहीं करती है। तो इस प्रकार से ये एक फ्रीडम की स्टेट है। बट सावित्री को वो वॉइस बताती है कि अब आपको कॉस्मिक सफरिंग का लोड लेना है, इतना काफी नहीं है कि आप व्यक्तिगत सफरिंग से मुक्त हो गए हो। तब सावित्री पूछती है कि व्हाट शुड आई डू, और पहली चीज जो बात होती है कि एनल दाई सेल्फ दैट ओनली गॉड मे बी। तो अब ये देखिए सारा चेतना का खेल है। चेतना हमें बांध देती है, प्रकृति हमें एक चेतना जो हमारी इंद्रियगत चेतना है, जो बाहरी चेतना है, सरफेस कॉन्शियसनेस, उसमें हम बंधे रहते हैं, उसी को सत्य समझते रहते हैं। जब हम उससे फ्री होते हैं तो हम जान जाते हैं कि नहीं, ये एक है, दृश्य है, उस दृश्य का क्या अर्थ है वो बाद में पता चलता है, लेकिन हम इससे फ्री हैं। अब इससे भी हम फ्री हो सकते हैं, इस पूरे दृश्य जगत से। एक स्टेट है चेतना की जिसमें हम ये सब रियलाइज कर सकते हैं कि ऑल दिस इज एक्चुअली नथिंग। इसका अनुभव बताते हैं ना श्री राम, ये स्वामी विवेकानंद, और इसका अनुभव होता है जब आप बिल्कुल ही एक पॉइंट आता है जब सारी चीजें जैसे थरथराती हुई वैनिश हो सकती हैं। बहुत फ्राइटनिंग है ना, फ्राइटनिंग नहीं होता है वो, लेकिन बहुत विचित्र लगता है। लेकिन उससे आपकी जो पकड़ होती है ना, जैसे पकड़ा हुआ होता है संसार में, वो एकदम छूट जाता है। इट कैन बी वेरी डिसओरिएंटिंग। स्वामी विवेकानंद के साथ हुआ था ना, जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने उनके हृदय पर हाथ रख दिया था, तो वो देखते हैं कि धीरे धीरे करते पूरा संसार गायब हो गया। तो ही सेज ये क्या हुआ, क्या हुआ? तब वो वापस लाते हैं, कहते हैं मजा आया, तो डाउट करता था ना। लेकिन यही चीज जब उन्होंने अपने भतीजे हृदय के साथ की तो ही लॉस्ट हिज हेड, क्योंकि आप एकदम डिसओरियंट हो सकते हो। आप कल्पना करो कि सडनली यू स्टार्ट लिविंग इन ए ब्लैंक वैक्यूम। चीजें हैं, इंद्रिय कार्य कर रही हैं, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं है। इट्स लाइक सिनेमा फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस। अंदर में देर इज ए टोटल स्टिलनेस। उनका जो आप जो उसको वैल्यू और मीनिंग देते थे वो सब उनसे खत्म हो गया है। आप उनसे उस तरह से जुड़े ही नहीं हो अब। सो देर इज ए स्टेट ऑफ इनर फ्रीडम। और सावित्री वो अनुभव करती हैं जब धीरे 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 उनकी मेंटल कॉन्शियसनेस कंप्लीट स्टिलनेस में चली जाती है। फिर उनकी जो प्राणिक चेतना यानी कोई भी आवेग संवेग घात प्रतिघात ये सब शांत हो गए हैं। बॉडी इज देयर, बॉडी फिनिश नहीं हो रहा है, लेकिन बॉडी एक सारे बॉडीज लुक लाइक अ सिनेमा इमेजेस विच आर मूविंग। सो उस अवस्था में सावित्री प्रवेश कर जाती है। अब इस अवस्था में भी वो सारे कार्यकलाप करती है, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि बुक 7 कैंटो 6 में चैत्य अवस्था में एक बड़ी सुंदर अवस्था है। शी इज ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ जॉय एंड पीस। मृत्यु का कोई अर्थ नहीं है, मृत्यु का कोई भय नहीं है। जब निर्वाण की अवस्था में होती है सावित्री, तो वो कैसे बोलती हैं, कैसे कार्य करती हैं? तो अगेन भगवद गीता में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात श्री कृष्ण कह जाते हैं, जिसको श्री अरविंद इलेबरेट करते हैं, निर्वाणा एंड वर्क्स इन द वर्ल्ड। बहुत लोगों को ये लगता है कि जो व्यक्ति अंदर में फ्री हो गया है निर्वाण अवस्था में, वो संसार से कोई लेन देन नहीं रखेगा। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, और इस मिसकंसेप्शन के कारण एक मिसगाइडेड एसेटिसिज्म जन्म लेता है। अब इसका रिवर्स क्या होता है, अगर आप संसार से कोई लेन देन नहीं रख रहे हो तो आप निर्वाण अवस्था में, विच इज नॉट एट ऑल ट्रू। निर्वाण एक आंतरिक अवस्था है जिसमें हमारा पूरा इनर बीइंग स्टिल होता है, और आप चाहो तो किसी भी समय उस स्टिलनेस में प्रवेश कर सकते हो, और आप चाहो तो युद्ध भूमि पर उतर सकते हो। इससे इसका श्री कृष्ण से बड़ा उदाहरण कौन है, अगर हम अपने सनातन धर्म को लें। और उसके बाद श्री अरविंद, जिन्होंने वॉल्यूम्स ऑल ऑफ देम केम इन स्टेट ऑफ निर्वाण। 1908 के बाद कोई भी ऐसी चीज नहीं है श्री अरविंद ने जो लिखी हो जो उस निर्वाण अवस्था में नहीं थी। एवरीथिंग वॉज इन दैट स्टेट, और सारे कर्म भी कर रहे थे। उन्होंने युगांतर पब्लिकेशन शुरू किया, धर्म प्रारंभ किया, लोगों के साथ बैठना मिलना, स्पीच देना, एवरीथिंग ही वॉज डूइंग। कैसे कर रहे थे श्री अरविंद? तो ये जो प्रश्न उठता है कि ऐसा व्यक्ति कैसा रहता है, अब यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि श्री कृष्ण के कुछ अधूरे प्रश्न जो रह गए थे वो श्री अरविंद, श्री कृष्णा टेकिंग द फॉर्म ऑफ श्री अरविंदो, अब यहां पर इसका डिस्क्रिप्शन है। बुक 7 कैंटो 7 द डिस्कवरी ऑफ द कॉस्मिक स्पिरिट एंड द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। वहां प्रारंभ में बताते हैं accustomed only to read outward signs, none so aught knew in her, none divined her state. निर्वाण का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता कि आप दो हफ्ते के कोर्स के बाद आपको कह दिया गया आज से आप निर्वाणानंद स्वामी हो, आपने हमारे यहाँ दो हफ्ते का कोर्स किया है, एक्सेलेंट, सुपर, एक थम्स अप के साथ कोर्स सर्टिफिकेट. नन सो, किसी को ये नहीं समझ आ रहा था कि इनके अंदर कोई परिवर्तन है. सावित्री इतना बड़ा अनुभव कर चुकी हैं, लेकिन नो बडी इज एबल टू सी. मनुष्य क्या देखता है, स्टोरी ना शरणानंद की, खड़े हुए लाइन में, आंखों से अंधे हैं, श्री अरविंद का दर्शन करने जा रहे हैं, कोई पूछता है आप तो खुद इतने बड़े संत हैं, आप किसका दर्शन कर रहे हैं, आपकी तो आंखें नहीं हैं, आप कुछ देख नहीं पाओगे, श्री अरविंद कुछ बोलेंगे नहीं, तो आप क्यों जा रहे हैं लाइन में. कहते भैया आंखें होती तो तुम कितना देख लेते, मैं तो इसलिए जा रहा हूं कि श्री अरविंद मुझे देख ले. ये जो है अंदर में ज्ञान उदय होना, तो बाहर से नहीं दिखाई देता है मनुष्य को. बाहर से लोगों को यही दिखाई, उस समय भी माताजी को माताजी कैसे कह रहे हैं श्री अरविंद, मतलब श्री अरविंद को मान रहे हैं योगी, क्योंकि श्री अरविंद एक ट्रेडिशनल योग के दृष्टि से भी ना वो उसमें आते हैं, जो ट्रेडिशनल योगी की एक, हालांकि ही इज वेरी अनट्रेडिशनल, पर अब लोग जैसे कि भाई एक कमरे में हैं, थोड़ा इस तरह से जो एक वो होती कम बात करते हैं, तो थोड़ा लोगों को एक ये माता जी आई हैं, माता जी फ्रेंच हैं, सबसे पहले तो यही कि भाई फ्रेंच तो हो ही नहीं सकता है योगी, सब तो हम लोगों ने पेटेंट करके रखा है, तो ये बहुत मुश्किल था उनको. शादीशुदा है ये भी पूछते हैं लोग, अच्छा माता जी ने शादी की थी, अरे श्री कृष्ण ने भी शादी की थी, आपको ये प्रश्न नहीं आता है कि वो योग योगेश्वर हैं, इट इज अवर ओन सनातन धर्म. श्री कृष्ण के बारे में कोई नहीं पूछता है कि श्री कृष्ण, फिर लोग बोलते हैं श्री अरविंद मृणालिनी देवी के को छोड़ के आगे, तो मैं कहता हूँ बुद्ध देव भी आए थे. पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि डिविनिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है. ऑफकोर्स शी वॉज मैरिड, एक समय किसी ने माँ से पूछा कि बट ट्वाइस यू गॉट मैरिड, एंड मदर सेज नॉट जस्ट ट्वाइस, एंड शी यू नो ब्रॉट आउट दैट रणचंडी वाला रूप अपना. वट इज मैरिज गॉट टू डू विद स्पिरिचुअल लाइफ. ये सारी चीजें जिनको हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, इतना औचित्य देते हैं, ये सब कोलैप्स कर जाती हैं, बिकॉज ये सब सिस्टम्स हैं इन दैट स्टेट. उसके बाद अगर कोई आपको ऐसे समझेगा ना, अच्छा आप यू आर मिस्टर सो एंड सो, आपकी मिसेस कैसी हैं, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि कौन सी मिसेस, किसकी मिसेस, मतलब इट इज अ गुड थिंग, बट इट यू आर नॉट आइडेंटिफाइड विद दैट. It is there as a part of your social life. It has not nothing to do with your identity or your life or anything like that. वो एक बिल्कुल अलग अवस्था है जिसमें व्यक्ति प्रवेश करता है. तो यहां पर none saw. They saw a person where was only God's vast. वो क्या देखते थे, अच्छा सावित्री, और उनसे वार्तालाप भी ऐसे करते थे, आ जाओ ये काम कर दो, चूल्हा सुलग गया कि नहीं, जल आप लाई कि नहीं. A still being or a mighty nothingness to all, she was the same perfect Savitri. कोई परिवर्तन नहीं आता है. सावित्री ये नहीं डिक्लेयर करती है, आज से तो भाई मुझे लेक्चर देना है जगह जगह जाकर के, और मैं एक नया मूवमेंट शुरू करूंगी जिसमें, क्योंकि मैं तो अब निर्वाण प्राप्त कर चुकी हूँ और लोग मालाएं पहनाएंगे. नथिंग, शी इज द सेम परफेक्ट सावित्री. इससे बड़ा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है एक योगी का, जो उस अवस्था में भी जीवन के वो सब ऑर्डिनरी काम कर रही हैं. A greatness and a sweetness and a light poured out from her upon her little world. Life showed to all the same familiar face. Her acts followed the old unaltered round. She spoke the words that she was wont to speak and did the things that she had always done. Sare karm wo kar rahi hai is nirvanic stillness mein. Empty of all but bare reality, there was no will behind the word and act. ये एक लक्षण होता है आंतरिक. इसको गीता में बड़ा सुंदर शब्द है, सर्व संकल्प सन्यासी. आप किसी कामना या इच्छा से मोटिवेट नहीं हो सकते हैं काम करने के लिए, तो फिर कैसे मोटिवेट होते हैं? इट इज लाइक द विल अराइजिंग फ्रॉम विद इन. श्री अरविंद इसको स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, सुप्रीम विल, इस चैप्टर में सिंथेसिस में डिस्क्राइब करते हैं कि फिर क्या होता है आपके अंदर से, लाइक अ एंथुजियाज्म, ए विल, इंस्पिरेशन दैट इमर्जेस. उसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ, मुझे क्या फायदा होगा, ये सब चीजें नहीं होती है. मेरा क्या लाभ होगा, मैं ऐसा करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा, जो ह्यूमन माइंड जैसे कैलकुलेट करता है, इट इज नॉन ऑफ दैट. और इट कैन डिसेंड फ्रॉम अबव एंड टेक होल्ड ऑफ वन सेल्फ. वो विल के अवेकनिंग से कार्य होते हैं, ह्यूमन विल नहीं. नो थॉट फॉर्म्ड इन हर ब्रेन टू गाइड द स्पीच. मुझे बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है. एन इम्पर्सनल एम्प्टीनेस वॉक्ड एंड स्पोक इन हर. इट यूज्ड हर स्पीच एंड एक्टेड इन हर एक्ट्स. It was beauty in her limbs, life in her breath, the original mystery wore her human face. Thus was she lost within to separate self, her mortal ego perished in God's night. Only a body was left, the ego shell. Wo reh jata hai. Wo last mein, physical ego is the last thing, and it is only when you are way ahead in the supramental yoga, tab wo cheez, kyunki wo aaj tak prayas nahi kiya gaya. Physical ego ka dissolve ho jana matlab you will डिसइंटीग्रेट. तो पुराने योग में क्या कहा जाता था, माँ ने इसका अनुभव किया है, क्योंकि वो जब बताती है ना अंत में सुप्रमेंटल योग का, वो 26 में ही अनुभव हो रहा था उनको. श्री अरविंद कहते हैं नॉट नाउ, नॉट नाउ. 61 में वो इसको एक्सपीरियंस करती है सुप्रमेंटल. तो उसमें क्या होता है, पुराने योग में ये अनुभव होता था नॉट इन वेकिंग कॉन्शियसनेस. माता जी वेकिंग स्टेट में अनुभव करती हैं. हर पार्ट की एक ईगो होती है, माइंड की ईगो होती है. आई एम दिस थॉट, तो आपके थॉट को कोई कॉन्ट्राडिक्ट करे तो आप क्या समझते हो, मेरा शत्रु है. और कोई आपके थॉट, अगर मान लो आप भी गांधी जी में विश्वास करते हो और दूसरा बंदा भी बोले कि गांधी जी महान है, अरे ये मेरा मित्र है ना. यही इस तरह से हम मेंटल ईगो ऑपरेट करती है. इमोशनल ईगो क्या होती है, जो मेरे प्रियजन हैं, स्वजन हैं, उनके प्रति आप. वाइटल ईगो, मेरा जो इंटरेस्ट, उसने मेरा भला किया है, लाभ किया है, तो मैं तो उसका लाभ करूंगा. ये सब ईगो के खेल है. फिजिकल ईगो वे लोग जो आपके शरीर से जुड़े हैं, आस पड़ोस के लोग, जो आपके माता पिता, इट्स ऑल फिजिकल ईगो, नथिंग एल्स. कोई बड़ा सीक्रेट ड्यूटी टुवर्ड्स पेरेंट्स, इट्स सॉरी एक्सक्यूज मी बट दिस इज ट्रूथ. शेरविन से किसी ने पूछा, कहा कि मैं योग करने लगा हूं तो मेरे अंदर से, जब से मैं इस पथ पे चल रहा हूँ तो मेरे अंदर, जैसे मैं पेरेंट्स के प्रति जैसे पहले महसूस करता था, अब मेरे अंदर ये सब नहीं है, क्या हुआ है, मैं हृदयहीन तो नहीं हो रहा हूँ. ही सेड नो, इट इज़ अ ड्रॉपिंग ऑफ ऑफ द तामसिक ईगो. पेरेंटल एफिलिएशंस आर बिकॉज ऑफ दैट. तमस यानी आप साथ में हो तो नेचुरल है. कहते ना आपके साथ कुत्ता भी घर में रहता है तो जुड़ जाता आदमी. हो जाता है ना, आप जो भी रहता है जिसे आप बचपन से कहते ना मेरी मिट्टी, उसी की खुशबू अच्छी लगती है, ऐसा फिजिकल ईगो. लैंग्वेज आप देखिए, आप कहीं भी रहने लगिए, आप लैंग्वेज की ईगो कैसी जुड़ी होती है. आप जाइए विदेश में, दिखने को मिलता है कि वो पहुंच गए और तो गुजराती का खुशबू, अच्छा बस देखिए शुरू हो गया, या उड़िया बंगाली की, तुम्हें बांग्ला, आई हैड दिस एक्सपीरियंस कहाँ पर, वो वाशिंगटन सिएटल बाहर आए, तो कुछ पता नहीं फ्लाइट लेट, कोई लेने वाला नहीं. जैसे अब हम लोग तो अतिथि आ रहे हैं तो 5 घंटे बाद भी लोग वेट करेंगे आ जाना. मैंने फ़ोन वोन किया बड़ी मुश्किल से, पैसे कहाँ से डालूं, क्या करूं, कुछ नहीं पता. एक सरदार जी दिख गए तो अच्छा करा दिया उन्होंने, बात करा दी. तो उसने कहा यू टेक ए कैब एंड कम, एड्रेस है. तो अब मुझे क्या पता एड्रेस कैब. अब बाहर आया ढूंढ ढांड के दरवाजा, तो अचानक एक कार रुकती है. कुछ चॉइस नहीं, चढ़ गया मैं उसके अंदर. तो मैंने तो रियलाइज नहीं किया कौन है, आधी नींद थके हुए. तो पूछता है आपने की बांग्ला. मैंने कहा ये कहाँ से, माता जी की ग्रेस ये कहाँ से आ गया. वो बांग्लादेशी था एक्चुअली, तो मुझे बांग्ला आती भी है थोड़ी बहुत. तो खैर उसको हिंदी भी आती थी. उसने कहा आप एड्रेस दे दो, मैं आपको पहुँचा दूंगा यहाँ. कितना भी रात के 2 बज रहे हैं, ढूंढ ढांड के आप किसी को उठा के पूछ नहीं सकते. और पहुंचा दिया उसने बंदे ने किसी ने किसी तरह. तो ये क्या होती है, ये एक प्रकार की ईगो जहां लैंग्वेज से आप एसोसिएट करते हो, है ना. अरे वो मेरी भाषा बोल रहा है. तो ये नाना प्रकार की ईगो होती हैं जो हमें पकड़े रहती हैं. जब हम इनसे फ्री हो जाते हैं तो हम किसी को भी, वी कैन प्ले विद इट बट वी आर नेवर आइडेंटिफाइड विद इट. हम अपने को किसी एक पर्टिकुलर कंट्री डोमिनेशन उससे नहीं आइडेंटिफाई करते हैं. तो यहां पर उसका वर्णन है कि ओनली ए बॉडी वॉज लेफ्ट एंड अब क्या होता है, अब इसमें एक समस्या क्या होती है, बिकॉज नॉर्मली हमारी जो चेतना बड़े सीमित दायरे में रहती है. सीमित दायरे क्या होता है, जो जन्म से या हमारे अब तक के विकास के कारण ईगो कुछ चीजों को सिलेक्ट करती है नेचर से और कहती है दिस इज मी. तो आप एक सेंस बना लेते हैं, हर व्यक्ति बनाता है, राइट रॉन्ग गुड बैड, वो नेविगेट करता है लाइफ को. अब वो जब दायरा खत्म हो जाता है तो क्या होता है, आप एक शून्य हो जिसके अंदर एनी फोर्स कैन एंटर. तो ये भी अनुभव सावित्री का, ए ड्यूअल पावर एट बीइंग्स ऑकल्ट पोल्स स्टिल एक्टेड नेमलेस एंड इनविजिबल, हर डिवाइन एम्प्टीनेस वॉज देयर इंस्ट्रूमेंट. ड्यूअल पावर एट बीइंग्स ऑपोजिट पोल्स, इनकॉन्शियंट नेचर डेल्ट विद द वर्ल्ड इट हैड मेड. तो वो अपने आप उनके शरीर के साथ जो कुछ इनकॉन्शियंट नेचर काम कर रहा है, जैसे भी जो जो शरीर के क्रियाकलाप है, बिकॉज शी इज नॉट एंटर्ड इन टू द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस येट. एंड यूजिंग स्टिल द बॉडीज इंस्ट्रूमेंट स्लिप्ड थ्रू द कॉन्शियस वॉइड शी हैड बिकम द सुपर कॉन्शियस मिस्ट्री थ्रू दैट वॉइड मिशनड इट्स वर्ड टू टच द थॉट्स ऑफ मेन. As yet, this great impersonal speech was rare. So she has become the vast. Because अब वो निहिल, अब वो ईगो की जो बाउंड्री है वो ध्वस्त हो गई है. अब इस अवस्था में some yogis can completely lose track. श्री अरविंद इसकी बात करते हैं, कहते हैं कि और पुराने योग में भी जहां रूपांतरण की बात नहीं है तो योगीज कहते हैं हाउ डज इट मैटर परमहंस, दे लेट थिंग्स फ्लाई थ्रू द नेचर. जड़वत, उन्मत्तवत, पिशाचवत, बालवत, योगी को आप किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं बांध सकते हो क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट से बाहर आ गया है. इस सत्य को जानते थे पुराने लोग, इसलिए वो सन्यासी को कहते थे थोड़ी देर के लिए घर में आओ, चाय पानी नाश्ता प्रवचन दान दक्षिणा फिर जाओ. बच्चे को कहते तो पढ़ाई कर. बिकॉज सन्यासी लिव्स इन ए डेंजरस फ्रीडम. यही तो कहानी ना शिव जी की, दक्ष प्रजापति कहते हैं आप मत आइए महाराज, बाकी सब आ जाएंगे, क्योंकि शिवा इज फ्री. उनको कोई आप अब बुलाया भी शादी में तो अब सोचिए कोई सेंसिबल व्यक्ति शादी में भूत प्रेत पिशाच. आप नहीं ऐसे कर, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस ना, इट इज अनसोशल बिहेवियर. पर शिवा इज नॉट सोशल, ही इज बियॉन्ड द पेल ऑफ ऑल सोशल नॉर्म्स एंड फॉर्म्स. फॉर्मलेस सेंस है सब में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. वो ऐसे लोगों की कंपनी रख सकता है, आपको लगे ये ऐसे व्यक्ति की कंपनी में कैसे है. दैट इज द काइंड ऑफ एक्शन दैट दीज बींग्स हैव. लेकिन इस योग में लेट मी क्वालिफाई, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इट हैज टू चेंज. माँ कहती है नथिंग डेफिनेट हैज बीन डन अंटिल द इवन द आउटर नेचर चेंजेस, बट पुराने योग में ये अल्टीमेट था. तो मां से जब किसी ने कहा कि लोग कहते हैं नेचर नहीं चेंज कर सकते, दैट्स व्हाई यू सी इवन पुराने जो ऋषि थे उनकी अपनी समस्याएं थी. क्यों समस्याएं थी, क्योंकि नेचर का रूपांतरण की बात ही नहीं थी. दे वेर ग्रेट बींग्स, उन्होंने रियलाइज किया था, लेकिन फिर भी नेचर के रूपांतरण की बात नहीं थी. अधिकतर मैक्सिमम माइंड के अंदर एक डिसेंट होता था, मंत्रों का वाणी में प्रकट होता था, बिकॉज दिस इज द हाइएस्ट सेंटर इट कैन ओपन. लेकिन लाइफ के पार्ट्स अनचेंज थे. तो अब लेकिन यहां उसका रूपांतरण होना है. तो मां कहती है यस यस आई नो ऑल ऑफ देम, बट वी आर हियर नॉट टू रिपीट दैट, वी आर हियर टू चेंज. तो अब सावित्री को उसमें प्रवेश करना है. लेकिन अब उसमें प्रवेश करने के पहले उनके अंदर क्या होता है, एन इंडिविजुअल वन विद द कॉस्मिक सेल्फ इन द हार्ट ऑफ द ट्रांसेंडेंस मिरेकल एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड पर्सनैलिटी वॉज द क्रिएटर एंड लॉर्ड ऑफ ऑल. अब यहाँ पे दो वर्ड यूज किए हैं श्री अरविंद ने, कॉस्मिक स्पिरिट एंड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, विश्व विश्व आत्मा और विश्व चेतना, इफ यू वॉन्ट टू पुट इट. अब वर्ल्ड सोल में इसी का डिस्क्रिप्शन है जो अशुपति करते हैं अपने ढंग से. तो भगवान तीन लेवल्स पे अपने आप को, तीन पॉइजेज में, तीन स्टेटस में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. एक है अंतर्यामी के रूप में, इमिनेंट डिवाइन, इंडिविजुअल डिवाइन, आप उनसे एक हो सकते हैं, गाइडेड हो सकते हैं. एक विश्व विराट के रूप में, रेयर योगिन्स रीच दैट पॉइंट. अर्जुन वॉज ए योगिन, सो ही वॉज गिवन दिस स्पेशल ग्रेस बाई श्री कृष्णा ऑफ दैट कॉस्मिक कॉन्शियसनेस. अब विश्व चेतना के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है कॉस्मिक ट्रूथ और एक होता है कॉस्मिक इग्नोरेंस. कॉस्मिक इग्नोरेंस भी उसी एक से निकला है, लेकिन कॉस्मिक इग्नोरेंस एक कवर की तरह है जिसके अंदर विश्व चेतना पलती रहती है जब तक वो तैयार नहीं होती है कॉस्मिक ट्रुथ के लिए। इसको हमारे स्क्रिप्चर्स में कहा गया है विद्यामयी और अविद्यामयी। डिफरेंस क्या होता है कॉस्मिक ट्रुथ और कॉस्मिक इग्नोरेंस में? कॉस्मिक ट्रुथ हमेशा एकत्व में रहता है और एकत्व में एक्ट करता है, और कॉस्मिक इग्नोरेंस अलग अलग अनेकत्व में रहता है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लें। जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें हम कहते हैं ना अपना, और वो अपनापन इतना हो सकता है कि हम लगभग ऐसा जैसे इफ यू आर एक्सटेंडिंग इन देम, पर ये कॉस्मिक इग्नोरेंस है, इसमें अनेकत्व है। कॉस्मिक ट्रुथ जब होता है तो सारी सृष्टि जो कुछ भी संसार के अंदर है और जिससे भी आप आइडेंटिफाई होते हो, लेकिन आप उस एक के आधार पर आइडेंटिफाई होते हो, इसका वर्णन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये दूसरा टर्म है भगवान का, और योग में ये सब हम लोगों को डिस्कवर करना है, रिकवर करना है। और इसके परे है कि पूरी विश्व चेतना के परे द ट्रांसेंडेंट, क्योंकि ट्रांसेंडेंट कौन सी वो अवस्था है जिसमें आप पूरे विश्व को एनल कर सकते हो, अटमोस्ट फ्रीडम, द एब्सोल्यूट। सो सावित्री के योग में क्या हो रहा है, एग्जैक्टली द मदर फॉलोड दिस ट्रेल। तो पहले वो इनर डिवाइन को रियलाइज करती है, फिर वो ट्रांसेंडेंट, शी गोज इनटू द अटमोस्ट, देन शी रियलाइजेज द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, बिकॉज दैट इज द राइट आधार, राइट वे टू गो अबाउट। अगर हम बिना इनर डिवाइन को रियलाइज किए हुए, बिना ट्रांसेंडेंट को टच किए हुए यदि हम विश्व चेतना में प्रवेश करते हैं तो बहुत भयंकर उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। श्री अरविंद बार बार कॉशन करते हैं, और लाइफ डिवाइन में पूरा एक चैप्टर है उस पर, ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन में, कि व्यक्ति को बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं जिसमें ट्रूथ और एरर मिक्स्ड है। कॉस्मिक इग्नोरेंस में कॉस्मिक माइंड है, बहुत सारे सजेशंस आ सकते हैं और आप हर चीज को मदर्स कमांड समझ सकते हो। कॉस्मिक वाइटल, जहां ट्रूथ एंड एरर आर मिक्स्ड। कॉस्मिक फिजिकल, अब आप सोचिए कि अगर अज्ञान में व्यक्ति उसमें प्रवेश कर जाए तो कितना डिसोरिएंटिंग हो सकती है उसकी लाइफ। ऐसा कुछ है कि जिसको तैरना नहीं आता वो समुद्र में कूद गया, अब वो समुद्र की तरंगे जहां उसको ले जा रही हैं। तो इसलिए पहले, सबसे पहला टास्क होता है टू डिस्कवर द डिवाइन विद इन, फर्स्ट टास्क। फिर ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस एंड द ट्रांसेंडेंट, ये अगर डिस्कवर हो गया तो सेफ है, क्योंकि आपको ठीक ओरिएंट रखेगा आपकी नाव को या जो भी है, एंड इट नोज, इट विल नो हाउ टू रेफर इट, एंड द डिवाइन विल टेक। तो ये तीन टर्म हैं, इंडिविजुअल, कॉस्मिक, ट्रांसेंडेंट, और इन्हीं को क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म में कहा गया है फादर, ट्रांसेंडेंट, सन, इंडिविजुअल, एंड द होली स्पिरिट। तो ये इसको अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन बेसिकली ये तीन टर्म्स हैं और तीनों को हमको रिकवर करना है। जब हम इंडिविजुअल डिवाइन को रिकवर करते हैं तो हम डिस्कवर करते हैं कि वी आर ए पोर्शन ऑफ द डिवाइन। जब हम कॉस्मिक डिवाइन को डिस्कवर करते हैं, उनके साथ एक होते हैं, तो वी सी आवर सेल्स एज वन सेंटर ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ द वन, वी आर जस्ट वन ऑफ द सेंटर्स, एंड द एक्शन ऑल्सो बिकम्स कॉस्मिक। और जब हम ट्रांसेंडेंट को डिस्कवर करते हैं तो ये सब कुछ एनल करके भी वी नो कि पूरी सृष्टि भी अगर समाप्त हो जाए स्टिल वी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बिकॉज आई एम वन विद दैट। तो ये तीनों लेवल्स पे एक योगिन हैज टू डिस्कवर। पर ये आमतौर पे योग के नाम पर वो क्या होता है वो तो खैर मैं नहीं बात कर रहा हूँ। तो इवन इंडिविजुअल डिवाइन की डिस्कवरी इज फार सम एक्सपीरियंस, सम ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। सो अब सावित्री उस डिस्कवरी में है जहां वो अपने आप को कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ, विश्व चेतना के साथ पूरी तरह आइडेंटिफाइड हो गई है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द वन, ये डिफरेंस है। तो वो जब डिस्कवर करती हैं तो वो क्या डिस्कवर करती हैं, सबके अंदर वो स्वयं को ही पाती हैं। अब आप इस अनुभव को दो तरह से कर सकते हो, एक भक्त होगा तो सब किसी के अंदर अपने भगवान को पाएगा, सेम थिंग। अब श्री अरविंद जब अनुभव करते हैं तो वो कैसे पाते हैं सब में वासुदेवम सर्वमिति, लेकिन सावित्री वो तो डिवाइन मदर है, वो तो सब चीज के अंदर वो स्वयं को ही प्रकट पाती है, दैट इज द डिफरेंस। दोनों, एक ज्ञान योगी एक ढंग से और एक भक्त दूसरे ढंग से जाएगा। तभी मैं कई बार कहता हूं कि श्री अरविंदो इज grossly misrepresented. Sri Aurobind, basically, if you see his whole yoga, is a bhakta of bhaktas. Right from beginning, agar aap unka pehla major step jo yoga ka hai, kaise shuru hota hai? Through utter surrender. Vishnu Bhaskar Lele kehte hain, aap karoge jo main kahunga? Haan? Guru mana hai? Jo kahoge main karunga. ये किस कौन कर सकता है? ये भक्त कर सकता है. तभी जब वो बाद में कहते हैं कि हाउ आई गॉट निर्वाणा, कहते मेरा कोई एफर्ट नहीं था, निर्वाणा वॉकड इनटू माय लाइफ विदाउट एज मच एज आस्किंग मी मे आई प्लीज सर. और फिर कहते हैं आई गॉट इट बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ कृष्णा एंड काली, इफ यू लाइक ग्रेस ऑफ द गुरु और द ग्रेस ऑफ कृष्णा एंड काली. श्री अरविंद का स्वयं ये स्टेटमेंट है. दैट इज हाउ ही स्टार्ट्स हिज जर्नी. माँ आई माँ तो मतलब इफ देर वॉज ए गॉड हु मेड दिस वर्ल्ड ही इज ए मॉन्स्टर. बुद्धिस्ट योग की अडेप्ट हो गई है. बुद्धिस्ट योग क्या है? अनात्मवाद है. एकदम डायरेक्ट शी वेंट इन टू द ट्रांसेंडेंट एंड द इमिनेंट डिवाइन बोथ दीज एक्सपीरियंसेस. देन शी वेंट इन टू ऑकल्टिज्म. देन ऑफकोर्स वेन शी कम्स टू श्री अरविंद एवरीथिंग. तो वो जो एक्सपीरियंस है जिसमें यू डिस्कवर योर सेल्फ इन एवरीथिंग. Her spirit saw the world as living God. It saw the one and knew that all was He. She knew Him as the absolute self space. So it starts from there. आप सब में भगवान को देख रहे हो और ये intellectual concept नहीं है. One with herself and ground of all things here, in which the world wandered seeking for the truth. Guarded behind its face of ignorance, she followed him through the march of endless time. All nature's happenings were events in her. The heartbeats of the cosmos were her own. She inhabited the vastness of the world. All beings thought and felt and moved in her. Batati ek jagah maa apne is virat roop ka darshan karwati hai. Kehti hai ki पूरी सृष्टि तो मेरे अंदर है. तो वो अब डिसाइपल के मन में आश्रम कहाँ है उसमें, कहती यहाँ पर है. पॉइंट करती हैं कि जहाँ पर हम लोग वो राइट साइड मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू में राइट इलियक फोसा जहाँ अपेंडिक्स होता है उस जगह, तो अम्बाइलिकस से लेके यहाँ, और बताती हैं इट इज़ लाइक ए प्रोलॉन्ग शेप. लेकिन वो कहती हैं इट्स ए स्पेशल फॉर्मेशन, मैंने इसको एक विशेष आकृति आकार दिया हुआ है और जो एक विशेष प्रकाश से गार्डेड है. और यदि हम वास्तव में इस भाव से रहते कि हम मां की चेतना के अंदर विद्यमान हैं, नो फोर्स कुड हैव एवर टियर टोन थ्रू इट, नथिंग. और ये उनका अपना ये कहा हुआ है कि इट इज गार्डेड बाय स्पेशल फॉर्मेशन, बट वी अलाउड इट टू बी ब्रीच्ड बाय थिंकिंग वी आर लिविंग ऑन अवर ओन बाय अवर सेल्स. अगर हम इस चेतना में रहते, इवन ए रीजनेबल नंबर ऑफ पीपल, कि ये माता जी के अंदर है, तो आप सोचो कोई चीज ऐसी हो सकती क्या कि माँ के सुरक्षा कवच को भेज जाए? वो तो मतलब सो दिस इज वेयर शी एक्सपीरियंसेस. नाउ वी हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस, क्योंकि एक बार ये चीज आ जाती है ना, देन यू हैव टू गो थ्रू दैट एंटायर इवोल्यूशनरी प्रोसेस. वो जो भी है, जैसे कोई बीमारी होती है, एक बार आपको एंटर कर जाती है तो इट हैज़ टू कंप्लीट इट्स साइकिल, बट अल्टीमेट रिजल्ट विल बी गुड. वो एक अलग बात है. ही मेक्स अवर फॉल ए मीन्स ऑफ ग्रेटर राइज, बट देयर वाज़ ए पॉसिबिलिटी. हो चुका है, सुनामी के समय लोगों ने इस चीज को विटनेस किया है, बट नाउ इट्स ए डिफरेंट थिंग, यू नो, ऑल्सो बिकॉज वी हैव टेकन ए डिफरेंट रूट. इतने केसेस हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, डर के रहो, बच के रहो. तो नाउ इट इज़ लाइक वी हैव इनवाइटेड, जस्ट लाइक सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, नहीं ये कहना चाहिए, ये सामयिक चीज है. सेकेंड वर्ल्ड वार के समय और मैं ये मानता हूँ कि माता जी के बच्चे अगर निर्भीक होकर आपस में नहीं चर्चा कर सकते तो फिर वो सच में माँ की संतान नहीं है. तो एक समय था जब सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जब लोग हिटलर से सिंपथाइज करते थे, सेम सिचुएशन है. तो माने श्री अरविंद ने क्या कहा, तुम लोग अगर चाहते हो कि मैं आश्रम बंद कर दूं तो खुद मुझे कह दो, लेकिन तुम अपने थॉट और फीलिंग्स में यदि हिटलर के साथ सिंपथाइज कर रहे हो तो यू आर इनवाइटिंग हिम. इफ यू वांट आई विल क्लोज द आश्रम, बिकॉज इफ ही कम्स दैट्स व्हाट विल हैपन. तो भगवान का सुरक्षा कवच मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ भी करते रहें, कुछ भी मनमानी कैसे भी जिए वो सुरक्षा कवच रहेगी नहीं, वो तो फिर डेंजरस हो जाएगा। फिर तो वो यादव कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं तो कुछ भी हम कर सकते हैं, इट इज नॉट लाइक कुछ भी। सो वी हैव टू, देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं ना, एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है, और अगर हम उससे नहीं रहते हैं तो फिर देन वी हैव टू गो थ्रू अनदर ग्रुप, इवोल्यूशन होगा, सब होगा, डेफिनेटली वो फ्यूचर एक बार माँ भगवान ने निर्धारित कर दिया, लेकिन वो पैसेज हम चुन सकते हैं, सामूहिक चेतना। शी वॉज अ सिंगल बीम येट ऑल थिंग्स द वर्ल्ड वॉज हर स्पिरिट्स वाइड सर्कमफ्रेंस। जब हम अपने शरीर की चेतना से बाहर निकलते हैं तो ये सब चीजें सहज स्वाभाविक, कई लोग पूछते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस में इस तरह की चीज होती है, एक प्रकार से विश्व चेतना में प्रवेश करते हैं तो ये कैसे होता है, बिकॉज ये तो हमें शरीर और इंद्रियां और मन बांध के रखता है कि हम ये सीमित सत्ता है। स्वप्न में भी ऐसा होता है कि आप एस्केप करते हो लिमिट्स ऑफ स्पेस टाइम से, होता है ना, और कई बार ऐसे होता है कि आप एस्केप करते हो इस लिमिट से और आपको पता चल जाता है दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या हो रहा है। ये सब कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में प्रवेश करने के कुछ चिन्ह हैं, लेकिन नॉर्मली हम कॉस्मिक इग्नोरेंस में प्रवेश करते हैं, तो आपको एक बार पता चलता है एक बार नहीं पता चलता है, लेकिन आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपको पता चल रहा है, या आपको एक साइड पता चलता है, ट्रुथ नहीं पता चलता है। सो ये सारी चीजें, द थॉट्स ऑफ अदर्स वेयर आर इंटीमेट्स देयर फीलिंग्स क्लोज टू हर यूनिवर्सल हार्ट। इंटीमेट का मतलब ये नहीं कि माँ सी बिकम्स एन एनसाइक्लोपीडिया, अच्छा वो क्या सोच रहा है वहां टिम्बकटू में बैठा हुआ, नहीं, यू कैन नो इफ यू वॉन्ट टू, बट वो सब कुछ, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है हम ले सकते हैं कि मान लीजिए एक आप सड़क पे जा रहे हो, बहुत सारी बातें हो रही हैं, कोई लोग बातें कर रहे हैं, कोई म्यूजिक चल रहा है, ये सब हो रहा है, तो आप कैसे उस चीज को अनुभव करते हो एज ए टोटैलिटी। लेकिन अगर कोई बोले कि अच्छा वो म्यूजिक क्या बज रहा है, तो आप क्या करते हो, अटेंशन देते हो और आप कह सकते हो कि ये म्यूजिक बज रहा है। कोई पूछे अगर आपको वो बगल वाले ने क्या कहा, किस भाषा में बात कर रहा है, तो आपने उसको ध्यान नहीं दिया है, बट वो एक टोटैलिटी के रूप में आपके अंदर जा रहा है, तो आप एक क्षण को रुकते हो और कॉन्सेंट्रेट करते हो, कहते हो ये इस भाषा में बात कर रहा है। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि विश्व चेतना में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम चाहे तो जान सकते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानना चाहता, इट इज़ द मोस्ट मिजरेबल थिंग टू डू, कौन क्या सोच रहा है, किसके अंदर क्या भाव हो रहा है, बिकॉज यू आर हियर टू डू ए वर्क, उसमें आप व्यय नहीं करते हो अपनी एनर्जी, लेकिन चाहो तो आप ट्रैक करके जान सकते हो। ये प्रश्न श्री अरविंद ने से किया था किसी ने माता जी के बारे में। अर्थ सॉ हर बॉर्न द डिस्टेंट कॉन्स्टेलेशंस व्हील्ड राउंड हर। ये बहुत सुंदर पैसेज है, समय की सीमा के कारण हम लोग कम पढ़ रहे हैं, ये पेज 556-557, प्लीज रीड इट। हर स्पिरिट सॉ द वर्ल्ड एज लिविंग गॉड टिल इटर्निटी लुक्ड आउट फ्रॉम हर ऑन टाइम। इट्स ए वेरी पावरफुल पैसेज। आप एक बस लाइन देखिए, Nowhere she dwelt, her spirit was everywhere. The distant constellations wheeled round her. Earth saw her born. All worlds were her colonies. माता जी से एक बार किसी ने पूछा कि सुना है योगी चंद्रमा में भी गए हैं, बोली हाँ तो बहुत आसान है, आप भी गए हैं? हाँ कई बार गई हूँ। क्या वहां पर बींग्स है? नहीं, बहुत ठंडा, इट इज कोल्ड एंड नोबडी इज देयर। सी न्यू दैट जो बींग्स थे वो आ गए धरती पर। उस समय माँ ने देखा ना कि एट वन प्लेस शी सॉ द चाइनीज एवरीवेयर, कहती हैं कि मेरे कमरे में भी हैं, आई डोंट वांट देम, क्योंकि वो मून से आए ना, चैत्य सत्ता नहीं है, तो वो तो फिर जब मून ठंडा हो रहा था देन दे केम, तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट एट इन दिस वे, लेकिन चैत्य सत्ता के अभाव के कारण जो मानव संवेदनशीलता है उसका अभाव है। पर माँ कहती हैं कि धरती पर रहते हुए उनके अंदर भी कुछ कॉन्टेमिनेशन से चैत्य के बीज इधर उधर तो पड़ी गए हैं, तो इस प्रकार से वो सब डिस्टेंट कॉन्स्टलेशंस मंगल ग्रह पे। शेरविन कहते हैं देयर वाज अ टाइम व्हेन द मदर वाज गोइंग आउट टू ऑल द प्लैनेट्स एंड एवरीवेयर इन द कॉस्मोस, बट आवर वर्क इज हियर, तो अब उन्होंने वो सब बंद कर दिया है, जगह जगह जाके भ्रमण। किसी ने बोला हिमालय के बारे में, कहती हाँ वो सब जगह मुझे पता है, जा चुकी हूँ मैं। कितना अच्छा है ना, कूल। कुछ आपको कुछ नहीं, बैठे बैठे आपने। लेकिन ये इसलिए नहीं किया जाता है। Its movements were large copies of her own. ये एक्चुअली वी कैन कर सकते हैं इसका एक छोटा सा, लोग कहते हैं लेकिन ये कैसे प्रवेश करें, कुछ लोगों को टेक्निक चाहिए ना विदाउट पेइंग द डॉलर्स, तो इसका तरीका ये होता है, इफ़ यू वांट टू डेवलप कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा हिस्सा, जब आप एक कमरे के अंदर है ना, तो जस्ट ट्रेन योर सेल्फ की वॉट इज बियॉन्ड द रूम. कभी प्रयास किया है? नहीं किया है. क्यों? हम कैसे जान सकते हैं, तो कल्पना है, ऐसे ही सोचा है ना. बट इफ यू ट्राई एंड स्ट्रेन योर सेल्फ, अगेन डिस्क्लेमर, डू इट एट योर ओन रिस्क. इफ यू ट्राई एंड स्ट्रेन आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ द एफर्ट योर कॉन्शियसनेस विल बिगिन टू एक्सटेंड. जुअल दाई इस एक्सपीरियंस को बताते हैं अपनी किताब में, जब एक योगी उनसे मिला था. यू कैन नो, यू कैन एक्ट. स्वयं में जब किसी से ऐसे मिला था तो मैंने पूछा था कि कैन यू नो वॉट इज बियॉन्ड द बाउंड्री वॉल, इज इट यस. बैठे बैठे एक रूम में बता दिया कि उस वॉल की उस तरफ क्या है, तो मैंने उचक के देखा, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसी रंग की गाय चल रही है, सो कैसे पता चला. तो ये संभावनाएं हैं अपने अंदर. ऑफकोर्स इनको इगोइस्टिक ढंग से करना मतलब क्रैश लैंड करना. ये सब भगवान की कृपा से डेवलप हो, लेकिन इसका तरीका ये होता है. हम मान के चलते हैं कि बस हमारी ये सीमा है, तो चूंकि हमने सीमाएं मान ली, तो बस जिस दिन हम ये कहेंगे कि नहीं हमारी ये सीमा नहीं है, अनंतो हम आनंदो हम, उस दिन हमारी सीमाएं खुलनी शुरू हो जाएंगी और अनंत और शाश्वत हमारे अंदर खेलना शुरू हो जाएंगे. और वही नहीं सब कुछ, शी वॉज द सब कॉन्शियंट, शी वॉज ए सब कॉन्शियंट लाइफ ऑफ ट्री एंड फ्लावर, द आउटब्रेक ऑफ द हनीड बर्ड्स ऑफ स्प्रिंग, शी बर्न्ड इन द पैशन एंड स्प्लेंडर ऑफ द रोज. तभी वो हर चीज का नाम जिस चीज पर. शी वॉज द रेड हार्ट ऑफ द पैशन फ्लावर, द ड्रीम वाइट ऑफ द लोटस इन इट्स पूल. Out of the sub, out of subconscient life she climbed to mind. She was thought and the passion of the world's heart. She was the Godhead hid in the heart of man. She was the climbing of his soul to God. ये कोई चीज अतिशोक्ति नहीं होती है. जब भी कहा जा, जब माँ कहती ना, living in the heart of each atom, I kindle the fire. अच्छा अच्छा, लोग कई लोग ऐसे थोड़ी होता है. अरे तुम्हारी सीमा है ना, तुम्हारी सीमा सृष्टि की सीमा है क्या? तुम्हारी सीमा है, तुमसे नहीं होता. तुमसे नहीं होता तो क्या कोई नहीं कर सकता? यही तो शिव धनुष का चैलेंज है. किसी से नहीं होता, रावण ने डिक्लेयर कर दिया. क्यों? मुझसे नहीं होता. अरे जो मैं नहीं उठा सकता ये बाकी लोग क्या करेंगे? राम जी ने कहा आई विल शो यू. जो तुमसे नहीं होता वो एक साधारण सुकोमल दिखने वाला राजकुमार कर सकता है. तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग. शी वॉज टाइम एंड द ड्रीम्स ऑफ गॉड इन टाइम, शी वॉज स्पेस एंड द वाइडनेस ऑफ हिज डेज. हम लोग विस्तार से नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये सब हम लोगों ने अलग अलग टॉक्स में विस्तार से किया हुआ है. एक समरी है. फ्रॉम दिस शी रोज वेयर टाइम एंड स्पेस वेयर नॉट, द सुपर कॉन्शियंट वॉज हर नेटिव एयर, इन्फिनिटी वॉज हर मूवमेंट्स, नेचुरल स्पेस, इटर्निटी लुकड आउट फ्रॉम हर ऑन टाइम. नमस्ते.